ये आकाशवाणी है। सामायिकी में प्रस्तुत है आम चुनाव 2019 के सातवें चरण का समग्र विश्लेषण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के एस सच्चिदानंद मूर्ति और पत्रकार शिशिर सिन्हा।
लोकसभा चुनाव का सातवां चरण कल होने वाला है और इसमें 59 लोकसभा सीटों पर 7 राज्यों में उन पर मतदाता लगभग 918 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मिस्टर मूर्ति, सबसे पहली चीज की सातवें चरण की किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये दौर?
ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार चुनाव पंजाब राज्य में हो रहा है। पंजाब का जो वहां का पॉलिटिक्स से काफी अलग है बाकी राज्यों के साथ, तो वहां कांग्रेस और एनडीए आम आदमी भी है, तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट चल रहा है और ये तो लंबी कैंपेन एक स्टेट में चला है, मगर वो तो एक है। और बाकी आप देखें तो जो उत्तर प्रदेश में या बिहार में जितना सीट है वो अगले सरकार का मेजॉरिटी का स्टेबिलिटी का बहुत महत्वपूर्ण है। और बंगाल में तो आप देखा है इतनी पॉलिटिकल गर्मी हो गई है, इसके लिए चुनाव भी एक दिन के लिए, प्रचार भी एक दिन पहले रोका, तो सब हो गया, तो ये पूरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है।
तीन राज्यों की हम बात करें, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर 7 चरणों में मतदान हुआ। सबसे ज्यादा जो सुर्खियां बटोरी हैं वो पश्चिम बंगाल ने बटोरी हैं। वजह एक तो कि बहुत वहां पर मतदान का जो प्रतिशत है 6 चरणों में वो काफी ऊंचा गया, 80% से ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ हमने वहां हिंसा की घटनाएं काफी देखी। यहां तक कि आज के दिन भी वहां पर कुछ छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। क्या लगता है आपको कि पश्चिम बंगाल में माहौल किस तरीके का है?
ये माहौल तो काफी पहले से शुरू हुआ है। आप देखें तो जहां पूरा देश में जहां जहां प्रतिपक्ष का सरकार है और केंद्र में बीजेपी का सरकार है उन पर थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्रंटेशन था, जैसे चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश सरकार के साथ, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के लिए उन्होंने एनडीए छोड़ के बाहर आया, ओडिशा में असेंबली चुनाव चल रहा है वहां थोड़ा कॉन्फ्रंटेशन था, मगर इतने ये 5 साल में बीजेपी और किसी रीजनल पार्टी के साथ इतनी लड़ाई हो गई वो तो बंगाल में। आपको याद है 3-4 महीने पहले उनका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ उनके पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट करने के बारे में, वो सत्याग्रह बैठे थे रास्ते में और पुलिस ऑफिसर्स और सब उनके साथ थे, तो इसलिए वहां तो कॉन्फ्रंटेशन पहले से शुरू हो गया है और उसका देख सकते हैं वहां का मतदाता भी इतनी बड़ी मतदान हो रहा है।
जब 80% से ज्यादा का मतदान हमेशा देखने को मिले तो क्या ये समझा जाए कि जो वहां पर सत्ता पक्ष है उस राज्य में उसके खिलाफ है या उसके समर्थन में है? इस तरह के जो हाई परसेंटेज होते हैं, बहुत ऊंचा मतदान होता है, उसको आप किस तरीके से देखते?
इसमें क्या होता है, दोनों पक्ष तृणमूल कांग्रेस वहां का सत्ता में है, बीजेपी दिल्ली में सत्ता में, इन दोनों उनका जो मतदाताओं को पोलिंग करने के लिए लेके आ रहे हैं इतनी इसमें, और कांग्रेस और सीपीएम तो वहां थोड़ा कम है उनका इन्फ्लुएंस, तो इसलिए ये हो रहा है। जब नतीजे आएंगे पता चलेंगे किन के खिलाफ किन के साथ ये लोग हैं, मगर हर घर पे जाके बोला है आप तो हमारा भविष्य का है, आप आके मतदान करना है।
मतलब ये जो बहुत ऊंचा मतदान हो, बहुत भारी मतदान हो, तो उसे लेकर के किसी स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। मैं बिहार और उत्तर प्रदेश में आना चाहूंगा, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर अलग अलग तरह के राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। बिहार में भी महागठबंधन है, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन है। बिहार के महागठबंधन में कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश के महागठबंधन में कांग्रेस नहीं है, कैसे होगा ये?
जैसे लोग बोलते हैं ना, जहां का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय पक्ष है एसपी या बीएसपी हो, वो तो मुगलसराय से पूर्व को नहीं जा सकते, और जहां जो पक्ष है वहां जेडीयू या आरजेडी या
बिहार में है
वो तो मुगलसराय से पश्चिम की तरफ नहीं आ सकते, मगर कांग्रेस तो कॉमन है दोनों राज्यों में, जैसे बीजेपी है। कांग्रेस वहां तो उनका ऑर्गेनाइजेशन काफी वीक है, मगर बिहार में कांग्रेस के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं क्योंकि तो उनका तो आरजेडी का सपोर्ट ज्यादा है।
चूंकि बिहार की हमने बात की है, मेरा सवाल इसलिए भी था कि ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के लोग महागठबंधन के खिलाफ उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के लोग जो हैं वो बिहार में जिस तरह का प्रचार कर रहे हैं, तो इसीलिए कांग्रेस को लेकर के मेरा ये सवाल था। एक सवाल यहां पर लालू प्रसाद यादव को भी लेकर के है, चूंकि वो इस चुनाव में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं है, कितना फर्क पड़ रहा है चुनाव के ऊपर?
काफी फर्क पड़ रहा है, एक तो उनका पक्ष को, राष्ट्रीय जनता दल को, क्यों तो वहां तो लालू प्रसाद जेल में है, इसलिए उनका दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में काफी डिफरेंसेस है, उस पर काफी चर्चा हो गई है। तो लालू प्रसाद वहां बैठ के काम करे तो कोई ये नहीं हो रहा, तो उस पर थोड़ा असर पड़ा है उनका पार्टी का जो चांसेस। दूसरा है, लालू प्रसाद बहुत मजबूर कैंपेनर है, वो अच्छा बात करते हैं लोगों के साथ, जनता से जुड़ जाता है, उनको बहुत शायर बोलते हैं, शायर ये करते हैं, और कोई उनका अपोनेंट कुछ बोले तो उसके रिटॉर्ट बहुत जल्दी देते हैं, तो वो थोड़ा कैंपेन भी थोड़ा डल हो गया।
मतलब चुनाव में उनकी बातें सुनने के लिए लोग आते थे, चुनावी रैलियों में आते रहे हैं। और बिहार में एक जो सबसे रोचक जिसे हम कहें वो पटना साहिब का मुकाबला है, जहां पर केंद्रीय मंत्री जो रविशंकर प्रसाद जी का मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा साहब से हो रहा है, जो कि पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में है। ये जो दोनों के बीच का टकराव है, एक बीजेपी और एक पूर्व बीजेपी नेता के बीच में, ये कैसे आप देखते हैं?
ऐसे है, शत्रुघ्न सिन्हा आप एक देखना है, 5 साल में बीजेपी का सांसद रहे भी,
वो दो बार सांसद,
दो बार इस बार इस टर्म पे, ये 5 साल में वो तो मानसिका थे तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी का खिलाफ थे, और उनसे ज्यादा स्टेटमेंट्स कोई नहीं किया बीजेपी में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ, तो इसलिए वो तो दूर चला गए थे। रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा पहले एक समय में बहुत अच्छा दोस्त थे, अब दोनों अपने आप लड़ा,
और दोनों एक ही जाति से भी जुड़े हैं,
जाति से जुड़े हैं, तो इसलिए ये तो रोमांचक है। और दूसरी है, जैसे आप कांग्रेस के बारे में पहले बताया, कांग्रेस का प्रत्याशियों में आप देखे तो कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा और तारिक अनवर, वो सब बाहर से इम्पोर्टेड है, और उनको तो कांग्रेस का कोई ज्यादा नेटवर्क भी नहीं है, तो जो आरजेडी का सपोर्टर्स है, लालू पर ज्यादा समर्थन के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ये करना है, मगर रविशंकर प्रसाद को तो काफी बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है और नीतीश कुमार का समर्थन भी है, तो ये रोमांचक चुनाव है।
एक और सीट है जो आरा, जहां पर बिजली मंत्री आरके सिंह साहब चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पर अगर मैं बेगूसराय के बाद किसी एक सीट की बात करूं तो जहां पर वाम दलों की उपस्थिति देखने को मिल रही है, उस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं?
वो भी अच्छा मुकाबला है, मगर वहां भी एक एंटी एनडीए वोट तो तरफ गठबंधन की तरफ जाएंगे, एक तरफ तो वामपंथी फ्रंट के जा रहे हैं, मगर बिहार में वामपंथी तो बहुत पहले से अच्छा काम किया है, चित्रानंद मिश्रा ऐसे नेता थे, कृषि मंत्री थे केंद्र में, तो ये तो अच्छा लड़ाई है, मगर जीत जाएगा ये तो मुझे थोड़ा डाउट है।
हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, वाराणसी को लेकर के उनके नतीजे को लेकर के बहुत ज्यादा संदेह नहीं है, लेकिन चर्चा यह है कि मार्जिन क्या रहेगा। वहां पर कांग्रेस भी है, वहां पर महागठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। वाराणसी चुनाव को देख करके आपको क्या लगता है कि क्या इस बार मार्जिन कुछ ज्यादा रह सकता है या बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं वहां?
बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ये बताया है, हम तो 8 लाख का मार्जिन देना है नरेंद्र मोदी जी को, मगर कल पता लगेगा परसेंटेज कितना होगा पोलिंग, क्योंकि तो बीजेपी का सब लोग ये काम कर रहे हैं, देखिए मोदी जी जीत जाएगा मगर आप घर पे मत बैठना, आप आ जाना। और दूसरा सवाल वहां है, कौन नंबर 2 आएंगे?
हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें कि आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और 4 राज्य की विधानसभा चुनाव के ताजा और प्रमाणिक परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं। देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी पहली बार लगातार 40 घंटे विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषीय कार्यक्रम विशेष जनादेश 2019 प्रस्तुत करेगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा। देशभर में आकाशवाणी की सभी 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां अपने अपने राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे आम चुनाव 2019 के 7वें चरण का समग्र विश्लेषण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक KS सचिदानंद मूर्ति और पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।